समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी गोल्ड पर एक नई सुबह का आगाज हो चुका है और आज का दिन तो बेहद खास है क्योंकि पंचांग के अनुसार आज से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। इसे गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत भी आज से ही होती है। हिंदू नववर्ष के पीछे मान्यता की बात करें तो कहते हैं इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो जब धरती अपनी धुरी पर घूमने के बाद सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है और दूसरा चक्र प्रारंभ होता है तब हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। और बात जब नववर्ष की हो ही रही है तो हम आपसे बस यही कामना करना चाहेंगे कि नववर्ष और नवरात्र का मंगलमय सूर्य आपके जीवन में खुशहाली का इंद्रधनुष लाए और इस साल आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाए। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे की, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं जया भारती और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
गुड मॉर्निंग जया। एंड सच अ पायस ओकेजन टुडे नवरात्रि। वेल, द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि इज हियर and the celebrations have begun, and a very very warm welcome to all our listeners into such pious edition of our news magazine program Aaj Savere. And listeners, you're tuned into Akashwani FM Gold on 100.1 megahertz and the Akashwani network. Well, for you we have a lot of interesting stuff which we have lined up. We'll begin with the national and international news. We'll give you all the metro city updates and we'll explore today's history, which is related to today, which is 30th of March, and we'll begin with the headlines first, shall we?
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जाएंगे। श्री मोदी सुबह महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचेंगे, वे स्मृति मंदिर में दर्शन करेंगे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापकों डॉ. केशव हेडगेवार और माधव राव गोलवलकर को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री गोलवलकर को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री दीक्षा भूमि जाएंगे और डॉ. भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नागपुर में लगभग 10 बजे माघव नेत्रालय प्रीमियर सेंटर की आधारशिला रखेंगे। वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी नागपुर में ही सोलर डिफेंस एरोस्पेस लिमिटेड में ड्रोन के लिए लॉयटरिंग म्यूनिशन टेस्टिंग रेंज और रनवे सुविधा का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री लगभग 3:30 बजे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे। श्री मोदी 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उनका जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। कई बिजली परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ में ग्रिड मजबूत होगी और बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के जनजातीय और औद्योगिक क्षेत्रों में संपर्क सुविधा बढ़ाने के लिए कई रेल और सड़क परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा।
The death toll in Myanmar has risen to 1,644 following a powerful 7.7 magnitude quake. The country's military-led government has also announced that the number of injured has risen to 3,408 while 139 people are still missing. It stated that the numbers could increase as detailed figures are still being collected. Most of the fatalities are in Mandalay, Myanmar's second largest city and the closest to the earthquake's epicenter. Meanwhile, Myanmar's shadow national unity government, NUG, has announced a two-week ceasefire in earthquake-affected areas to support relief efforts. NUG said that its armed wing, the People's Defense Force, will implement a two-week pause in offensive military operations starting Sunday in earthquake-affected areas. The Ministry of External Affairs has informed that five Indian Air Force aircraft have landed in earthquake-hit Myanmar's Yangon and Nee Pi Thaw as part of Operation Brahma. The aircraft carried HADR materials, 60 parafield ambulance and NDRF personnel. Earlier, around 15 tons of relief material were sent to earthquake-hit Myanmar on an IAFC-130J aircraft from AFC Hindon. India is the first country to bring rescue personnel to the capital, where the airport is still not fully operational after the earthquake. The NDRF team will proceed to Mandalay today, becoming the first rescue team to reach the city for operations.
देशभर के मंदिरों में सवेरे की आरती के साथ 9 दिवसीय चैत्र नवरात्र उत्सव आज शुरू हो गया है। यह त्यौहार देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा के लिए समर्पित है। 9 दिवसीय उत्सव का समापन भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी के दिन होता है। आकाशवाणी का YouTube चैनल आराधना नवरात्र के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोताओं को आज से 6 अप्रैल तक गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करने के लिए आकाशवाणी तैयार है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आराधना चैनल नवरात्र के मर्म के बारे में विशेष भक्ति कार्यक्रमों की श्रृंखला दर्शकों तक पहुँचाएगा।
नवरात्रि उत्सव का विशेष आकर्षण अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल जैसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भजन होंगे। ये प्रस्तुतियां प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7 बजे तक प्रसारित की जाएंगी। चैनल के बारे में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने बताया कि चैनल एक विशेष श्रृंखला पेश करेगा जिसमें नवरात्रि के प्रत्येक दिन के महत्व पर प्रकाश डाला जाएगा।
इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी माँ की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी माँ के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम।
समारोह का समापन अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर से सीधे राम जन्मोत्सव पर एक भव्य लाइव कार्यक्रम के साथ होगा। ये विशेष प्रसारण 6 अप्रैल को होगा जो पूरे देश के दर्शकों तक दिव्य उत्सव पहुँचाएगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील जीवन शैली अपनाने के महत्व को रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना हमारा नैतिक दायित्व है।
आने वाली पीढ़ियों के लिए हम स्वच्छ पर्यावरण की विरासत प्रदान करें, इसके लिए हमें पर्यावरण के प्रति सचेत संवेदनशील जीवन शैली अपनानी होगी ताकि पर्यावरण का संरक्षण तो हो ही, इसके अलावा उसका संवर्धन भी हो तथा तो पर्यावरण और अधिक जीवंत बन सके।
Well, now let's give you some sports update as well. In the IPL cricket, Gujarat Titans defeated Mumbai Indians by 36 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. Put into bat first, Gujarat Titans posted 196 for 8 in their stipulated 20 overs with the help of Sai Sudarshan's 63 of 41 balls. For Mumbai, Hardik Pandya picked up 2 wickets. In reply, Mumbai Indians could only score 160 for the loss of 6 wickets in 20 overs, with Surya Kumar Yadav top scoring with 48 of 28 balls. For Gujarat, Mohammad Siraj and Prasidh Krishna claimed 2 wickets each. In today's fixtures, Delhi Capitals will face Sunrisers Hyderabad in Vishakhapatnam at 3:30 PM, while Rajasthan Royals will take on Chennai Super Kings in Guwahati at 7:30 PM.
मौसम विभाग ने ओडिशा के 6 जिलों में आज भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है। विभाग ने संबलपुर, झारसुगुड़ा, सोनपुर, बौद्ध, बोलांगीर और अंगुल जिलों के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में कल संबलपुर सबसे गर्म स्थान रहा, यहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब रुख करते हैं मेट्रो न्यूज का। सबसे पहले जानते हैं चेन्नई का हाल शगुन से।
Yes, we will begin with Chennai's metro. And the Tamil Nadu Forest Department is set to launch a hornbill conservation initiative aimed at protecting the habitats of this endangered species. A center of excellence dedicated to hornbill conservation will be established at the Annamalai Tiger Reserve. State Forest Minister D. Ponmudi announced this while presenting the forest demands for grants in the assembly. The Tiger Reserve is known for its sizable population of great hornbills and grey hornbills and for the decades of research on the birds. Now let's focus on Bengaluru. The Bangalore Water Supply and Sewerage Board, BWSSB, is awarded the prestigious World Water Award for its outstanding contributions in sustainable urban water supply and management. The award is to be presented in New Delhi tomorrow, which is constituted by the Water Digest in collaboration with UNESCO. The award to BWSSB is in recognition for its exceptional efforts in water treatment, reuse and conservation, along with the community participation. The board took several initiatives that reduced unaccounted water from 28% to 20%, replenished 23 lakes with treated water in the city, delivered zero bacteria water to IT corridors and promoted use of treated water for non-potable purposes. The Water Board also promoted water conservation through the Green Start Challenge for the citizens and installed 10 lakh aerators for taps across the city to enhance water efficiency. It constructed 3,000 rainwater harvesting tanks and collaborated with the Indian Institute of Science to establish Groundwater Recharge Task Force.
और अब समय है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली विधानसभा में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 9 संवत्सर 2082 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह पहली बार है जब दिल्ली विधानसभा परिसर में हिंदू नववर्ष मनाया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल रकाबंगज गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री विकास परियोजना के तहत एक नई योजना का शुभारंभ किया है, जिसे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री रिजिजू ने बताया कि इसमें 31,600 युवा शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत AI, डेटा साइंटिस्ट, 5G टेलीकॉम टेक्नीशियन, AR/VR, ग्राफिक डिजाइनर और सोलर PV इंस्टॉलर जैसी भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल से युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही यह परियोजना से सिख समुदाय के युवाओं के प्रशिक्षण कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
इसमें स्किलिंग के लिए जो बेसिक सिख कम्युनिटी में युवाओं के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के लिए टारगेट करके हम काम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता चाहिए वो भी हम मदद करेंगे। अलग अलग यूनिट सेंटर बना के काम करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा होगा।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु प्रदूषण कम होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चरण एक के तहत लागू सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कल दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने बताया कि हाल के दिनों में अनुकूल मौसमी परिस्थितियों और तेज सतही हवा के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक में काफी सुधार हुआ है। आने वाले दिनों में यह मध्यम श्रेणी में बने रहने की संभावना है। शगुन, अब आप बताएं बेंगलुरु मेट्रो के क्या समाचार हैं?
जी, बट आई हैव अनदर अपडेट विच इज फ्रॉम हैदराबाद हियर,
ओके,
राइट। एंड द 9-day लॉन्ग फेस्टिवल चैत्र नवरात्रि फेस्टिवल इट बिगन टुडे, सो डिड द तेलुगु न्यू ईयर डे उगादी। The Telugu-speaking people across the world are celebrating it, and people are observing the customary festivities with the traditional fervor and gaiety. The festival is being celebrated across the two Telugu states, Telangana and Andhra Pradesh, to mark the beginning of the Hindu lunar calendar. People across Telangana are celebrating the Vishvavasu Nama Ugadi of the Telugu calendar. Besides listening to Panchangam, an ancient practice of listening to the New Year forecast, people save a special Ugadi chutney comprising neem flower, jaggery, salt, sugarcane, tamarind and mango to indicate the six basic tastes. This is the chutney for the special Ugadi chutney. Meanwhile, Governor Jishnu Dev Verma wished people happiness and prosperity to all the people, Telugu people. He highlighted Ugadi as a festival that reflects Telugu culture and fosters unity among Telugu-speaking communities worldwide. In his address, the governor encouraged people to embrace the new year with dedication, commitment and hard work. He emphasized the importance of self-service and noble deeds in building a better future. Coinciding the Ugadi, Chief Minister A. Revanth Reddy will be formally launching fine rice distribution to the BPL families in Telangana later this afternoon from Huzur Nagar Assembly constituency. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu will be participating in the official celebrations to be held in Vijayawada later this morning.
अब चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की ओर. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देते हुए नागरिकों से राज्य और देश के विकास के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि नया साल किसानों, श्रमिकों, उद्यमियों और सभी क्षेत्रों के लिए समृद्धि, खुशहाली और प्रगति लेकर आएगा. कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय और संस्कृति में महाराष्ट्र के नेतृत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की देशभक्ति और स्वाभिमान की विरासत से प्रेरणा लेने पर जोर दिया. फडणवीस ने युवाओं को उद्यमिता, शिक्षा और नवाचार में सफलता की कामना की और नए साल में सभी के लिए प्रकृति के आशीर्वाद और समृद्धि की प्रार्थना की. महाराष्ट्र के सामान्य प्रशासनिक विभाग GAD ने सभी विभागों को राज्य सरकार के बारे में गलत सूचनाओं से निपटने के लिए एक प्रोटोकॉल लागू करने का निर्देश दिया है. विभागों को सूचना और जनसंपर्क महानिदेशालय DGIPR से अलर्ट के अनुसार 12 घंटे के भीतर भ्रामक रिपोर्टों को स्पष्ट करना होगा. विभिन्न प्लेटफार्मों पर नकारात्मक बयानों को ट्रैक करने और संबोधित करने के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट वाला एक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है. DGIPR के महानिदेशक ब्रिजेश सिंह ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य जनता तक सटीक जानकारी पहुंचाना है. अब देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता का रुख करते हैं. पूर्वी रेल अप्रैल से ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेन चलाएगा. सियालदह, मालदा, कोलकाता स्टेशनों से न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, नई दिल्ली, आनंद विहार, उधना, पुरी और अन्य स्टेशनों के लिए 11 ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें चलेंगी. हावड़ा स्टेशन से ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी. तो ये थे अब तक के मेट्रो समाचार. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सवेरे आकाशवाणी गोल्ड पर जया और शगुन के साथ. और अब जानते हैं कि आज के मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की. दिल्ली में आज दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा. न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. कोलकाता में भी आसमान साफ रहने की संभावना है. अनुमान है कि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं शगुन से.
Yes, Jaya, we'll begin with Chennai again. Chennai is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 36 degrees. Bengaluru is also expected to have a partly cloudy sky here again. The minimum temperature was 22 degrees Celsius and maximum will be around 35 degrees. Hyderabad is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 25 degrees and a maximum of 34 degrees Celsius.
और अब समय है इतिहास के पन्नों में दर्ज उन घटनाओं पर नजर डालने का जो आज के दिन इतिहास बन गई.
वेल, वील टेक आवर लिसनर्स वे बैक इन टाइम. इन द ईयर 1699, गुरु गोविंद सिंह, द 10th गुरु ऑफ सिख्स, एस्टैब्लिश खालसा पंथ. इन द ईयर 1796, द जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्राइडरिश गाउस डिस्कवर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हेप्टाडेकागन.
वर्ष 1919 में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध की घोषणा की थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए रॉलेट एक्ट को लागू किया था। यह एक काला कानून था। इसे अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के तहत सरकार को बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को जेल में रखने का अधिकार था।
In the 1923 now year, new financial measures, they came into force, including restoration of salt tax. In the 1929, weekly postal service across 5,000 miles by aeroplane started between England and India, serving India, Egypt, Palestine and Iraq in London.
आज ही के दिन राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1949 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी स्थापना की थी और जयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था।
इन द ईयर 1953 अल्बर्ट आइंस्टाइन अनाउंस्ड अ रिवाइज्ड यूनिफाइड फील्ड थ्योरी।
आज ही के दिन भारतीय सिनेमा के महानतम फिल्मकारों में से एक सत्यजीत रे को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया था।
नाउ लिसनर्स, इन द ईयर 1994 एक्सिम पॉलिसी स्ट्रीमलाइन टू अट्रैक्ट एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी।
और वर्ष 1998 में चीन के उत्तरी हिस्से शेंडोंग में भीड़ की हड्डी पर उकेरी हुई 3,000 साल पुरानी कुछ शब्दावलियां प्राप्त हुई थी। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे उन जानी मानी हस्तियों को जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। आज सिखों के आठवें गुरु हरकृष्ण जी की पुण्यतिथि है। 5 वर्ष की आयु में वे अपने पिता गुरु हर राय के उत्तराधिकारी बनकर सिख धर्म के सबसे युवा गुरु बने और बहुत ही कम समय में लोकप्रियता भी हासिल कर ली। ऊंच नीच और जाति का भेदभाव मिटाकर उन्होंने सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी मानवता की सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाला पीर कहकर पुकारने लगे। 1664 में गुरु हरकृष्ण जी को चेचक हो गया था और 8वें जन्मदिन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी।
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग अनदर ऑथर नॉवलिस्ट कार्ल फ्राइडरिश मे, वेल बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स ऑफ ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स सेट इन द अमेरिकन ओल्ड वेस्ट, द ओरिएंट, द मिडल ईस्ट, द लैटिन अमेरिका, चाइना एंड ऑल्सो जर्मनी। ही ऑल्सो रोट पोएट्री, प्लेज एंड कंपोज्ड म्यूजिक एज वेल। And it's interesting to note here that he was a proficient player of several musical instruments as well. Well, many of his works were adapted for film, theater, audio dramas and comics. And later in his career, he turned to philosophical and spiritual genres as well.
आज पुण्यतिथि है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक लेखक, गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंगकार और पत्रकार मनोहर श्याम जोशी की। उनके कई गद्य आज भी लोगों की जुबान में रहते हैं। उन्हीं में से एक है ये, प्रेम को वही जानता है जो समझ गया कि प्रेम को समझा ही नहीं जा सकता। मनोहर श्याम जोशी का जन्म 9 अगस्त 1933 को कुमाऊं में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक किया था। भारतीय दूरदर्शन के पहले धारावाहिक हम लोग के लिए पटकथा जोशी जी ने ही लिखी थी। आइए सुनते हैं इसका टाइटल सॉन्ग। जोशी जी की प्रमुख रचनाओं में कुरु कुरु स्वाहा, कसप, हरिया, हरक्यूलीज की हैरानी, हमजाद, क्या आप एक दुर्लभ व्यक्ति जैसे कई शामिल हैं। क्या आपके लिए उन्हें वर्ष 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आज ही के दिन भारत के लोकप्रिय कवि और गीतकार आनंद बख्शी की भी पुण्यतिथि है। उन्हें कुल 40 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार की श्रेणी में फिल्म पेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि उन्हें 4 बार ही पुरस्कार मिल सका। वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी गीत आज भी हमारी जुबान पर है।
Well, one of Indian cinema's most prolific lyricists, Anand Bakshi, poet and lyricist. Well, his work, his journey from a modest beginning to a lyrical genius is awe-inspiring, and well, we can hear his lyrical genius in this particular song as well, and his poetic brilliance, it continues to enhance and inspire. Well, moving on, today we're also remembering Vincent van Gogh. Let's talk about him now, Dutch post-impressionist painter. And in just over a decade, he created approximately 2,100 artworks here, including 860 oil paintings that includes landscapes, still lifes, portraits and self-portraits, most of which are characterized by bold colors and dramatic brushwork. And there is a quote which I would like to share, which he obviously shared. I put my heart and my soul into my work and have lost my mind in the process. Well, I want to talk about his paintings, one of the paintings being of the sunflowers, which is among his most famous. He painted a total of 5 large canvases with sunflowers in a vase with 3 shades of yellow and nothing else. And in this way, he demonstrated that it was possible to create an image with numerous variations of a single color without any loss of eloquence. This painting had a special significance for him as they communicated gratitude to him. He has written that.
आज असम पंडित की भी पुण्यतिथि है. वे अपने समय के सबसे लोकप्रिय और लोकप्रिय चित्रकारों में से एक थे. अपने चित्रों में पंडित ने अपने विषयों को सुंदर, मांसल, वीर पुरुषों और कामुक रूप में सुंदर महिलाओं के रूप में चित्रित किया, जो सिनेमा की सेटिंग और दृश्यों के परिवेश में थे. आज पुण्यतिथि है ओट्टुपुक्कल वेलुकुट्टी विजयन की, जिन्हें आमतौर पर ओवी विजयन के नाम से जाना जाता है. वे भारतीय लेखक और कार्टूनिस्ट थे. आधुनिक मलयालम भाषा साहित्य में वे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे. उन्होंने 6 उपन्यासों, 9 लघु कहानी संग्रह और निबंध, संस्मरण और चिंतन के 9 संग्रह लिखे.
Well, today we're also remembering Lalita Ambika Antarjanam, author and social reformer best known for her literary works in the Malayalam language. Well, she was influenced by the Indian independence movement and social reform movements as well, and her writing reflects a sensitivity to the women's role in the society, in the family, and as an individual. Let me name 2 of her novels here. She also wrote short stories, poems and children's literature, and the novel which I'm going to name is Agni Sakshi. And she has also won the Kendra Sahitya Academy Award and the Kerala Sahitya Academy Award as well.
आज पुण्यतिथि है दाएं हाथ के बल्लेबाज दत्ताराम धर्मजी हिंडेलकर की भी. उन्होंने 1936 और 1946 में भारत के पहले पसंद के विकेटकीपर के रूप में इंग्लैंड का दौरा किया. उन्होंने बॉम्बे पॉट ट्रस्ट में भी काम किया. उचित उपचार के अभाव में हिंडेलकर की 40 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी.
Well, today, listeners, we are also remembering Devika Rani Chaudhary. Devika Rani, considered as the first lady of Indian cinema as well. Well, she has significant contributions she has made to cinema and Bollywood. It became what it is today by her performances. She shaped kind of the very foundation of the Indian cinema. And she was more than just a leading actress. She was a powerhouse of talent, intelligence and vision.
जी, अदाकारा देविका रानी चौधरी का जन्म 30 मार्च 1908 को हुआ था. उन्हें देविका रानी के नाम से भी जाना जाता है, और भारतीय सिनेमा की पहली महिला के रूप में व्यापक रूप से पहचानी जाने वाली देविका रानी का फिल्म करियर लगभग 1 दशक तक सफल रहा. सिनेमा में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार उन्हें ही दिया गया था. आइए सुनते हैं उनका गीत.
पंछी बन के संग संग डोलू रे.
Well, today, it's also the birthday of Eric Clapton. Well, very, very famous among musicians, among practicing guitarists, rock and blues guitarist, singer and songwriter. He's regarded as one of the most successful and influential guitarists in rock music. And listeners, for you, we have this wonderful song, Wonderful Tonight, which he performed live.
आज 14 शरदिंदु बंदोपाध्याय की भी जयंती है। वे बंगाली भाषा के लेखक थे और बंगाली सिनेमा के साथ साथ बॉलीवुड से भी सक्रिय रूप से जुड़े थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना काल्पनिक जासूस ब्योमकेश बख्शी है।
Well, before I tell you about the next artist, we have something related to this tune for all of you listeners. So, listen in. Well, today it's Celine Dion's birthday. Powerful, technically skilled vocalist and very successful works have made a significant impact on popular music.
और श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। आपके बेहतर दिन और नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ अनुमति दीजिए जया और शगुन को आज सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार।